प्रिय श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम ईश्वरीय वाणी की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जहरा जैदी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
इस कार्यक्रम में पवित्र कुरान के दो छोटे सूरों हुमजा और फील की समीक्षा की गई है। आशा है हमारा आज का प्रयास भी आपको पसंद आएगा।
सूरह हुमजा पवित्र कुरान का 104 सूरा है और ये मक्के में नाजिल हुआ था और इसमें 9 आयतें हैं। इस सूरह में उन लोगों की बात की गई है जिन लोगों ने अपने सारे प्रयास धन संपत्ति एकत्रित करने में लगा दिए हैं और अपने अस्तित्व की भेंट इन्हीं चीजों पर चढ़ा देते हैं। उसके पश्चात ये लोग उन लोगों को गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं जिनके पास धन दौलत नहीं होती और उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरों में कमी ढूंढने वाले, दूसरों की बुराई करने वाले, चोगलखोर, दूसरों का मजाक उड़ाने वाले और धन संपत्ति का भंडारण करने वाले उन लोगों में से हैं जिन्हें सूरह हुमजा में संबोधित किया गया है। ये वे लोग हैं जिनका अंजाम पीड़ादायक होगा और बहुत ही अपमानजनक ढंग से नरक में डाले जाएंगे।
पवित्र कुरान के कुछ व्याख्याकर्ताओं का मानना है कि इस सूरह की आयतें वलीद बिन मुगैरा के बारे में नाजिल हुई हैं, जो पैगंबर इस्लाम की पीठ पीछे बुराई करता था और सामने भी उनका मजाक उड़ाता और उन पर कटाक्ष करता था। जबकि कुछ व्याख्याकर्ताओं का मानना है कि इस सूरह की आयतें अखनस बिन शरीक, उमैया बिन खलफ और आस बिन वायल जैसे अनेकेश्वरवादियों के बारे में हैं, परंतु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये आयतें उन समस्त लोगों के बारे में हैं जिनके अंदर ये विशेषताएं पाई जाती हैं।
सूरह हुमजा की पहली से तीसरी आयत में महान ईश्वर कहता है कि धिक्कार हो हर उस बुराई करने वाले पर जिसने धन संचित किया और उसकी गणना की, वो सोचता है कि उसका धन उसे अमर बना देगा।
हुमजा हम्ज शब्द से बना है जिसका अर्थ टूटना है, और चूंकि दूसरों में कमी ढूंढने वाले और बुराई करने वाले दूसरों के व्यक्तित्व को तोड़ देते हैं, इसलिए उन्हें हुमजा कहा गया है। लोमजा का अर्थ भी दूसरों की बुराई करना और कमी ढूंढना है। पवित्र कुरान के कुछ व्याख्याकारों का मानना है कि ये आयत उन लोगों के लिए चेतावनी है जो दूसरों की बुराई करते हैं और चुगली करके लोगों में द्वेष, दुश्मनी और ईर्ष्या के बीज बोते हैं। इसी प्रकार ये आयत उन लोगों के लिए चेतावनी है जो लोगों की बुराई जबान या हाथों और आँखों के इशारे से करते हैं, या लोगों पर आरोप लगाते या उन पर कटाक्ष करते हैं।
इस आयत के अनुसार धन संचित करने का एक नुकसान ये है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति दूसरों को गिरी हुई दृष्टि से देखता है। तो जिस इंसान के पास अधिक संपत्ति हो उसे धन दौलत के धोखे में नहीं आना और उस पर घमंड नहीं करना चाहिए।
दूसरों में कमी ढूंढना एक नैतिक बुराई है और पवित्र कुरान के विभिन्न आयतों में इस चीज से मना किया गया है और कमी ढूंढने वाले की आलोचना की गई है। इंसान की सोच चाहे अच्छी हो या बुरी, वो स्वयं और दूसरों पर प्रभाव डालती है। दूसरों के अंदर कमी ढूंढना भी एक नैतिक रोग है और उसका स्वयं इंसान और दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसका एक दुष्परिणाम स्वयं उस व्यक्ति का अपमानित होना है जो दूसरों के अंदर दोष ढूंढता है।
महान ईश्वर के निकट मोमिनीन प्रतिष्ठित व सम्मानीय है और वो इस बात की अनुमति नहीं देता कि कुछ ईर्ष्यालु और बुरे लोग उसके बंदों की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें। अतः ऐसा करने वालों को परलोक में दंड देने के अतिरिक्त वो इसी दुनिया में अपमानित करेगा। हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम के हवाले से फरमाते हैं, मोमिनीन की गलतियों को मत ढूंढो, क्योंकि जो भी अपने भाई की गलतियों की खोज में रहेगा ईश्वर उसकी गलतियों की खोज में रहेगा, और जिसकी गलती की खोज में ईश्वर रहे तो वो उसे अपमानित करके छोड़ेगा, यद्यपि वो अपने घर के अंदर ही क्यों न रहे।
कुल मिलाकर पवित्र कुरान ने अपनी शिक्षाओं के एक भाग को इसी बात से विशेष किया है और उसने लोगों को दूसरों में कमी ढूंढने से मना किया है। इस आधार पर दूसरों में कमी ढूंढने से विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले नुकसान पर ध्यान दिया गया है। पवित्र कुरान दूसरों की बुराई करने, मजाक उड़ाने, झूठ बोलने, कंजूसी और अज्ञानता जैसी नैतिक बुराइयों की ओर संकेत करता है और उसने इंसान का आह्वान किया है कि वो इन बुराइयों से मुकाबला करके अपने अंदर से इनका अंत कर दे। अलबत्ता यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि पैगंबरों, मासूमों और ईश्वरीय दूतों के अलावा शायद ही कोई ऐसा इंसान मिले जिसके अंदर दूसरों में बुराई ढूंढने की बुराई ना हो। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी कमियों को अच्छी तरह पहचाने और पूरी गंभीरता से उन्हें दूर करने का प्रयास करे।
फील पवित्र कुरान का 105वां सूरा है। ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ था और इसमें 5 आयतें हैं। सूरह फील एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत करता है। उस चकित कर देने वाली ऐतिहासिक घटना में महान ईश्वर ने खाने काबा को अब्रहा और हाथियों की उस सेना से बचाया है। अब्रहा और उसकी सेना खाने काबा को ध्वस्त करने के लिए गए थे। इस घटना को याद दिलाना घमंडी व हर धर्मी काफिरों को एक चेतावनी है कि वे जान लें कि महान ईश्वर की शक्ति के मुकाबले में वे कुछ भी नहीं हैं। सूरह फील की आयतों का अनुवाद इस प्रकार है कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे पालनहार ने हाथी सवारों के साथ क्या किया? क्या उनके षड्यंत्रों पर पानी नहीं फेर दिया और उनके सिरों पर पक्षियों को दल दल में भेजा ताकि उन पर कंकरियां गिरा दें, तो उन्होंने उन सबको चबाए हुए भूसे की तरह बना दिया।
यमन का शासक ज़ुनुआस था। उसने पास में रहने वाले नजरान के ईसाइयों को कड़ी यातना दे रखी थी ताकि वो ईसाई धर्म छोड़ दें। उनमें से दूस नाम का व्यक्ति बच निकलने में सफल हो गया और उसने स्वयं को रोम सम्राट के पास पहुंचाया, जो ईसाई धर्म का अनुयायी था, और उसने पूरी बात उससे बताई। इसके बाद रोम सम्राट ने हबशा अर्थात वर्तमान इथोपिया के शासक नज्जाशी के नाम एक पत्र लिखा कि वो ज़ुनुआस से नजरान के ईसाइयों का प्रतिशोध ले। नज्जाशी ने अरियात नाम के व्यक्ति को सेनापति बनाकर उसके नेतृत्व में 70,000 की सेना यमन रवाना की। अब्रहा भी इस सेना का एक कमांडर था। यमन के शासक ज़ुनुआस और अरियात की सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में ज़ुनुआस की पराजय हुई और अरियात यमन का शासक बन गया। कुछ समय के बाद अब्रहा ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसे मारकर स्वयं उसके स्थान पर शासक बन गया। इस बात की खबर नज्जाशी तक पहुंची तो उसने अब्रहा का दमन करने का फैसला किया, परंतु अब्रहा ने जल्दी से नज्जाशी के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा कर दी। नज्जाशी ने उसे माफ कर दिया और उसे उसके पद पर बाकी रखा। इसी बीच अब्रहा ने दिखावटी सेवा भाव के तहत यमन में एक सुंदर व महत्वपूर्ण गिरजाघर का निर्माण करवाया, जो अपने समय में अद्वितीय था। उसके बाद उसने अरब के लोगों को काबे का दर्शन करने से जाने से रोकने के लिए यमन में निर्मित गिरजाघर में बुलाने का फैसला किया। इसी प्रकार उसने ये भी निर्णय किया कि अरब यहीं पर हज करें ताकि लोग इस गिरजाघर का दर्शन और उसकी परिक्रमा करें। इसी उद्देश्य से उसने हिजाज और आसपास की अरब भूमियों व कबीलों में बहुत से प्रचारक भेजे। समस्त प्रयास के बाद भी अब्रहा अरबों के ध्यान को अपने नवनिर्मित गिरजाघर की ओर आकृष्ट करने में सफल नहीं हो पाया। इससे वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने खाने काबा को ध्वस्त करने का फैसला किया। अतः इस कार्य के लिए हाथी सवारों की एक भारी सेना तैयार करके वो मक्के की ओर चल पड़ा।
जब वो मक्के के निकट पहुंचा तो उसने कुछ लोगों को भेजा ताकि वे मक्का के रहने वालों के ऊँटों और संपत्ति को लूटें। इस दौरान अब्रहा के लोगों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँटों को भी लूट लिया। अब्रहा ने किसी को मक्का नगर के भीतर भेजा ताकि मक्का के प्रमुख व प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके पास लाया जाए। सब ने पैगम्बर इस्लाम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ओर संकेत किया और वो व्यक्ति हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अब्रहा के पास ले गया। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के पास पहुँचे तो वो बहुत प्रभावित हुआ, यहाँ तक कि उनके सम्मान में खड़ा हो गया और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। इस पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे 200 ऊँटों को लूट लिया है, तुम मेरे माल को लौटाने का आदेश दो। अब्रहा ने आश्चर्य से कहा, जब मैंने आपको देखा तो आपकी महानता और रोब मेरे दिल में बैठ गया, किंतु आपके इन शब्दों ने आपको मेरी दृष्टि से गिरा दिया है और آپ 200 اونٹوں کی بات کرتے ہیں کنتو آپ کعبے کے بارے میں بات نہیں کرتے، جبکہ وہ آپ کے اور آپ کے پوروجوں کے دھرم سے سمبندھت ہے اور میں اسے دھوست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو سوئم اس کی رکشا کرے گا۔ حضرت عبد المطلب کی اس بات سے ابراہ ہل گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ حضرت عبد المطلب مکہ لوٹ آئے اور لوگوں سے کہا کہ آس پاس کے پہاڑوں میں شرن لیں، اور سوئم کچھ لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے سمیپ پہنچ گئے اور ایشور سے سہایتا مانگی۔ ابراہ ہاتھی پر سوار ہو کر بہت بڑی سینا کے ساتھ کعبے کو دھوست کرنے کے لیے مکے کی اور روانہ ہو گیا۔ اس بیچ سمندر کی اور سے پکشیوں کا دل پہنچ گیا، ان میں سے ہر ایک کے پاس 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، 1 چونچ میں اور 2 چنگل میں۔ ان پکشیوں نے ورشا کے پانی کی بھانتی ان کنکریوں کو ابراہ کی سینا کے سروں پر گرانا آرمبھ کر دیا۔ جب کنکریوں کی ورشا ابراہ کی سینا پر ہوئی تو وہ سب کے سب چبائے ہوئے بھوسے کی بھانتی زمین پر گر کر مر گئے۔
کنکریاں ابراہ کو بھی لگیں، وہ گھائل ہو گیا اور اسے یمن واپس لے جایا گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ یہ مہتوپورن اور شکشا پرد گھٹنا 570 عیسوی میں ہوئی۔ اتہاسکاروں کے مدھے پرسدھ بات کے انوسار پیغمبر اسلام اسی ورش پیدا ہوئے تھے۔ یہ گھٹنا اس بات کا کارن بنی کہ اس ورش کا نام عام الفیل ارتھات ہاتھیوں والا سال رکھا گیا۔
جیسا کہ کہا گیا کہ یہ سورہ چیتاونی ہے سنسار کے سمست گھمنڈی و شکتیشالی لوگوں کے لیے کہ وہ سینا اور سینک سنسادنوں کی درشتی سے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، پرنتو مہان و سرو سمرتھ ایشور کی شکتی کے سامنے اسمرتھ اور کچھ بھی نہیں ہیں۔
روچک بات یہ ہے کہ شترو اپنے سمے کے یدھ کے آدھنکتم ہتھیار و سینک سنسادھن کا پریوگ کرتا ہے، پرنتو مہان ایشور چھوٹے چھوٹے پکشیوں اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے مادھیم سے شکتی کے نشے میں چور گھمنڈیوں کا انت کر دیتا ہے۔